हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, करते हैं कुछ प्लान? अक्षय ने जैसे ही ये कहा, अहाना के लबों की मुस्कान सिमट गई। उस वक्त तो हमारे पास वक्त ही नहीं होगा, बोर्ड के पेपर्स आने वाले होंगे। ये सुनकर अक्षय के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अभी तो मुमकिन नहीं है, शादी में कितनी छुट्टियां हो गई हैं और मेरा अंदाज़ा है कि अगले हफ्ते मेरी नाइट शिफ्ट लग सकती है। अहाना के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई, जिसे देखते हुए अक्षय ने पल भर सोचने के बाद आगे कहा, कल चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। उसके इस आइडिये को अहाना ने पल भर में ठुकरा दिया। आप थक कर आएंगे और अगले दिन फिर ड्यूटी पर भी जाना होगा, रहने दीजिए। फिक्र थी उसे अक्षय की, अपनी इच्छा के कारण उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अक्षय ने तुरंत ही अगला सुझाव उसके सामने रख दिया, सैटरडे चलते हैं, संडे को आपकी और मेरी दोनों की छुट्टी होगी, या संडे ही चलते हैं घूमने, सारा दिन एक साथ बिताएंगे। संडे चलेंगे, अहाना ने इस बार झट से उसकी बात मान ली, पर चेहरे पर उदासी अब भी बरकरार थी। अक्षय उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। अब तो अपने चेहरे पर बिखरी इस उदासी को दूर कीजिए, मैं अपनी बीवी के लबों पर वो प्यारी सी मुस्कान देखने को बेकरार हूँ जो मेरे दिल का सुकून है। अक्षय की बात सुनकर अहाना हौले से मुस्कुरा दी, फाइनली उसकी खोई मुस्कुराहट लौट आई थी और ये देखकर अक्षय के चेहरे पर सुकून सा उतरा था। अंतरा और अन्वय डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और रात के करीब 1 बजे घर लौटे थे, जिसका असर अगले दिन नजर आया। दोनों ही सुबह 9 बजे तक सोते रहे थे, जिसके लिए रूपाली जी उन्हें ताने मारने से बाज ना आई, पर किसी ने उनकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, वरना सुबह सुबह सबका मूड खराब हो जाता। अगले दिन दृशांत आया था, अंतरा और अहाना दोनों से मिला और अंतरा चंद दिन अपने ससुराल में बिताने के बाद वापस अपने घर लौट गई। उसके जाने से सबसे ज्यादा राहत रूपाली जी को मिली, पर उनका शैतानी दिमाग उसके खिलाफ भी षड्यंत्र रचने लगा था। पर वो भूल गई थी कि इस बार उनका सामना अहाना जैसी शांति, समझदार, सहनशील और शरीफ लड़की से नहीं, अंतरा से होने वाला है, जो कभी अपने माँ बाप के हाथ नहीं लगी तो वो उसके सामने कैसे टिक सकेंगी। खैर, उनके अच्छे दिन देखते ही देखते बीत गए थे। अंतरा 1 महीना अपने मायके में बिताने के बाद एक बार फिर सहगल निवास लौट चुकी थी। इस 1 महीने में अक्षय और अहाना ने 3 संडे एक साथ बिताए थे। रूपाली जी अब भी उनके प्लान में अड़ंगा लगाने की कोशिश करने से बाज नहीं आती थी, पर अक्षय भी कोई तिकड़म लगा ही लेता था ताकि अहाना के साथ कुछ वक्त बिता सके। अंतरा और अन्वय की रोज ही फोन पर बात होती थी। आज शाम को ही अंतरा दिल्ली लौटी थी और सफर की थकान का असर था कि आज अन्वय और अंतरा दोनों जल्दी ही डिनर करके सो गए थे और अगले दिन से शुरू हुआ था असली तमाशा। सुबह सुबह फरमान जारी हुआ कि आज अंतरा की पहली रसोई की रस्म होगी और वो भी नहा धोकर रसोई में पहुंच गई। अहाना भी उसके साथ ही थी। अंतरा ने सबके लिए चाय बनाई। आज तो उसके प्यारे पतिदेव, जिसकी नींद सुबह 8 बजे से पहले नहीं खुलती थी, वो भी उसके साथ ही उठ गया था। अंतरा ने सबके लिए चाय बनाई। अन्वय अभिजीत जी संग बाहर बैठा था। अंतरा ने दोनों को चाय दी, फिर उनके सामने बैठी रूपाली जी को चाय दी, जो अभी अभी वहां आई थी, और खुद वहीं खड़ी हो गई। आंखों में शरारत लिए, लबों पर चंचल मुस्कान बिखेरे वो बड़ी ही उत्सुकता से उनके चाय पीने का इंतजार कर रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि उसने कुछ तो करामात की है जिसका अंजाम रूपाली जी भुगतने वाली थी। अंतरा के खतरनाक इरादों से अनजान रूपाली जी ने जैसे ही चाय की पहली सिप ली, उनके चेहरे के भाव बिगड़ गए। अजीब सा मुंह बनाते हुए उन्होंने उस घूंट को गले से नीचे उतारा और गुस्से से अंतरा पर भड़क उठी। इतनी मीठी चाय, तुम क्या डायबिटीज करवाकर हमें मारना चाहती हो? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हमारी अंतरा मैडम ने अपनी प्यारी सासूमा को चाय के बजाय चाशनी पिला दी थी और अब वो उस पर गुस्से से फायर हो रही थी, जबकि अंतरा अब भी बिल्कुल बेफिक्र थी। इतने अच्छे नसीब कहाँ हमारे कि इस जहरीली डायन से इतनी जल्दी हमारा पीछा छूट जाए। रूपाली जी की बात सुनकर अंतरा बुरा सा मुंह बनाते हुए बड़बड़ाई। आवाज ठीक से बाहर तो नहीं आई, पर रूपाली जी पर टिकी उसकी निगाहें और चेहरे के भाव बहुत कुछ जाहिर कर गए थे। कुछ कहा तुमने? रूपाली जी ने तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए रौबदार आवाज में सवाल किया। समझ गई थी कि उनकी इस बहू ने उनके खिलाफ कोई बात कही थी। अंतरा ने झट से बिना घबराए हामी भरी और बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, हाँ मैं कह रही थी कि आपकी जुबान इतनी कड़वी है, लगता है बस कसैली चीजें ही खाती हैं, इसीलिए जुबान भी वैसी ही हो गई है और हर वक्त जहर उगलती रहती हैं। इसीलिए मैंने जानबूझकर आपकी चाय में चीनी ज्यादा डाल दी। क्या पता चाय की कुछ मिठास आपके शब्दों में भी भूल जाए और आपकी बेचारी बहुओं को आपके कड़वे जहरीले तानों से कुछ राहत मिल जाए। अंतरा ने मासूमियत से अपनी पलकों को झपकाते हुए ऐसा चेहरा बनाया जैसे कितनी सताई हुई बेबस दुखियारी हो। अन्वय और अभिजीत जी, जो अब तक हैरान परेशान से उन दोनों को देखे जा रहे थे और परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, अंतरा की बात सुनकर और उसके चेहरे के भाव देखकर बेसख्ता हंस पड़े। पहली ही गेंद में उसने अपनी सास को क्लीन बोल्ड जो कर दिया था। ऐसा जवाब दिया कि पल भर को उनकी तीखी जुबान हिल तक न सकी, पर जैसे ही उन्होंने दोनों को हंसते देखकर उनके तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से अंतरा पर चिल्ला उठी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे साथ इतना भद्दा मजाक करो, हमसे जुबान लड़ाओ। अरे सासूना, मैंने मजाक कहाँ किया, मैं तो बहुत सीरियस हूँ, और जुबान लड़ाने की बात बीच में कहाँ से आ गई, अब क्या सवाल का जवाब देना भी जुबान लड़ाने में आने लगा है। अंतरा एकदम इनोसेंट बन गई, जैसे को तैसा देने वाली इस घर में आ चुकी थी, और आते ही न सिर्फ रूपाली जी की बोलती बंद की थी बल्कि साथ में उन्हें दिन में तारे दिखाने की तैयारी भी कर चुकी थी। अपनी इस शिकस्त पर गुस्से में भुनभुनाते हुए उन्होंने चाय का कप मेज पर पटक दिया और कप के चारों ओर बिखरी चाय को देखकर एक बार फिर अंतरा पर बरस पड़ी। खड़ी खड़ी हमारी शक्ल क्या देख रही हो, नजर नहीं आ रहा टेबल पर चाय गिरी है, जाओ जाकर पोछा लेकर आओ और टेबल साफ करो। सासूमा हर वक्त अपनी ये जो 10 हाथ लंबी कैंची जैसी तेज और जहरीली कसैली जुबान चलाती रहती है, उसे आराम देकर अपनी जरा खुद के हाथ पैर भी चला लिया कीजिए, बैठे बैठे जंग लग गए तो बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होगी आपको। वैसे भी अभी हमारे पास आपके फैलाए रायते को समेटने का वक्त नहीं है, आपने जो हमें नाश्ते की लंबी चौड़ी लिस्ट थमाई है उसे भी हमें ही बनाना है, इसीलिए हम तो चले अपना काम करने, वरना उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो आपको फिर मौका मिल जाएगा हमें प्रवचन सुनाने का, जिसे सुनने का हमारा बिल्कुल मन नहीं है। रूपाली जी अंतरा पर दबदबा जमाने चली थी, बड़ी दादागिरी दिखा रही थी, पर अंतरा ने भिगाकर ऐसा चपेड़ मारा कि उनके होश ठिकाने लग गए। उन्हीं की जुबान में उन्हें जवाब देने के बाद मुंह ऐंठते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही रूपाली जी अनवय पर भड़क उठी। कहा था हमने तुम्हें इस बदतमीज लड़की से शादी मत करो, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी, अब देख लो अपने फैसले का अंजाम। अंजाम तो आप देखेंगी मम्मी, अपने कर्मों का, अनवय रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया और अपना कप उठाए अंदर की ओर बढ़ गया। अभिजीत जी ने भी वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और रूपाली जी अकेले वहां गुस्से से भड़की हुई अपना खून फूंकती रह गईं।